एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की गहराई में उतर रहे हैं जो इतिहास के एक बहुत ही टर्बुलेंट मतलब तूफानी दौर की कहानी है।
हाँ, फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि।
बिल्कुल, और उस पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत जीवन की उथल पुथल, प्रेम, त्याग और मुक्ति की एक यादगार कहानी, चार्ल्स डिकेंस का मशहूर उपन्यास ए टेल ऑफ टू सिटीज,
दो शहरों की कहानी।
हाँ, दो शहरों की कहानी।
और इसकी शुरुआत मतलब कौन भूल सकता है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स।
ये सर्वोत्तम समय था, ये निकृष्टतम समय था, कमाल की पंक्तियां।
बिल्कुल, डिकेंस शुरू से वो कंट्रास्ट, वो विरोधाभास सेट कर देते हैं, जैसे कहानी एक धार पे चल रही हो, अच्छाई बुराई, उम्मीद नाउम्मीदी, सब एक साथ।
सही कहा। और ये द्वंद्व सिर्फ समय का नहीं बल्कि जगहों का भी है, लंदन और पेरिस।
हाँ, 1775 में कहानी शुरू होती है इन दो शहरों के बीच।
लंदन में तो फिर भी थोड़ी शांति है ना, लेकिन पेरिस, वहां तो जैसे तूफान आने से पहले की शांति है, क्रांति की सुखबुगाहट
एकदम साफ महसूस होती है। और इसी माहौल में एंट्री होती है टेल्सन बैंक के मिस्टर जार्विस लॉरी की।
बड़े विश्वसनीय लेकिन थोड़े रहस्यमयी से बुजुर्ग।
हाँ, और वो एक अजीब सा संदेश लेकर डोवर जा रहे हैं, जीवन में वापस बुलाया गया, रिकॉल्ड टू लाइफ।
और ये शब्द सिर्फ संदेश नहीं है, ये तो पूरे उपन्यास का जैसे केंद्रीय धागा बन जाते हैं।
बिल्कुल, और ये संदेश जुड़ा है एक नौजवान लड़की लूसी मैनेट से।
अच्छा।
मिस्टर लॉरी उसे बताते हैं कि उसके पिता डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, जिन्हें वो सालों पहले मरा हुआ समझ चुकी थी, वो जिंदा हैं।
क्या?
हाँ, उन्हें पेरिस की वो कुख्यात जेल बैस्टील, वहां से 18 साल की गुमनाम कैद के बाद रिहा किया गया है।
18 साल? जरा सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी ये सुनकर, अविश्वसनीय,
कल्पना करना भी मुश्किल है। खैर, वो पेरिस पहुंचते हैं सेंट एंटनी नाम का एक गरीब इलाका। वहां डिफार्ज पति पत्नी की शराब की दुकान है, उसके ऊपर एक अंधेरी सी अटारी में डॉक्टर मैनेट मिलते हैं।
लेकिन वो वैसे नहीं मिलते होंगे जैसी लूसी ने कल्पना की होगी।
बिल्कुल नहीं, कैद ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया है, अपनी पहचान खो चुके हैं।
ओह।
खुद को अपनी कोठरी के नंबर से पुकारते हैं, 105 नॉर्थ टावर, और बस लगातार जूते बनाने में लगे रहते हैं।
जूते?
हाँ, एक हुनर जो उन्होंने जेल की तन्हाई में सीखा था। उनकी हालत मतलब दिल कांप जाता है देखकर।
लेकिन यहीं लूसी का प्यार उसकी करुणा इन तक पहुंचती है।
हाँ, पहली बार जैसे सालों के अंधेरे के बाद कोई रोशनी की किरण।
और इसी सेंट एंटोनी की गली का वो दूसरा दृश्य, वो भी तो बहुत मार्मिक है।
हाँ, वो शराब का पीपा टूटने वाला,
मतलब वो सड़क पे बिखर जाता है और भूखे प्यासे लोग उसे मतलब ऐसे ही चाटने लगते हैं जैसे खून हो।
डिकिन्स यहाँ कमाल कर जाते हैं, आने वाले रक्तपात का, क्रांति की उस प्यास का कितना सटीक संकेत है वो।
बिल्कुल। खैर, डॉक्टर मैनेट लंदन लौटते हैं, लूसी की देखभाल में धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति सुधरती है।
हाँ, वो एक सम्मानित डॉक्टर के तौर पर फिर से जीने लगते हैं।
लेकिन
क्या वो अतीत पूरी तरह पीछा छोड़ता है?
शायद कभी नहीं। जब भी कोई गहरा सदमा लगता है, कोई तनाव होता है, वो फिर से जूते बनाने लगते हैं।
ओह, वो आदत लौट आती है।
हाँ, जैसे जख्म भर तो गया है पर निशान वो हमेशा के लिए रह गया है।
ये दिखाता है कि कैसे गहरा आघात इंसान पर एक स्थायी छाप छोड़ जाता है।
पर उनकी कहानी फिर से जी उठने की भी है, वो रिकॉल टू लाइफ का पहला उदाहरण है।
और इस पुनर्जीवन की कुंजी कौन है?
लूसी मैनेट,
जिसे डिकिन्स सुनहरी धागा कहते हैं, गोल्डन थ्रेड।
वो जैसे करुणा और प्रेम की मूर्ति है।
हाँ, न सिर्फ अपने पिता को जीवन में वापस लाती है बल्कि कहानी के एक और बड़े जटिल पात्र को भी प्रेरित करती है,
सिडनी कार्टन।
सिडनी कार्टन, जहाँ लूसी रोशनी है वहाँ कार्टन जैसे अंधेरे में खोया हुआ
एक बहुत प्रतिभाशाली वकील है ना।
है ना?
लेकिन
हाँ, बेहद काबिल, लेकिन शराब में डूबा हुआ, खुद से नफरत करने वाला, उसे लगता है उसकी जिंदगी एकदम बेकार है, व्यर्थ है।
और इसी दौरान कहानी में चार्ल्स डाने भी आता है।
हाँ, चार्ल्स डाने एक फ्रांसीसी रईस, लेकिन अपने परिवार के जुल्मों से, उनकी विरासत से तंग आकर,
अपनी पहचान छुपाकर,
हाँ, सब छोड़कर इंग्लैंड आ जाता है और एक साधारण शिक्षक की जिंदगी जीने लगता है।
और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है ना, जब डाने पर मुकदमा चलता है लंदन में।
बिल्कुल, जासूसी का झूठा मुकदमा, और बचाव पक्ष में सिडनी कार्टन भी होता है।
और तभी पता चलता है
कि कार्टन और डाने की शक्ल हूबहू मिलती है।
क्या बात है।
और कार्टन अपनी समानता का इस्तेमाल करता है, बड़ी चालाकी से गवाह को कंफ्यूज कर देता है
और डाने बड़ी हो जाता है।
हाँ, और इस घटना से इन दोनों की किस्मत जैसे जुड़ जाती है। दो लोग जो दिखने में एक जैसे पर अंदर से बिल्कुल अलग,
एक तरफ सिद्धांतवादी नेक इरादों वाला डारने
और दूसरी तरफ निराशा में डूबा अपनी प्रतिभा बर्बाद करता कार्टन।
हाँ।
और दोनों दोनों लूसी से प्रभावित हैं।
कार्टन भी?
हाँ, कार्टन मन ही मन लूसी से मतलब गहरा प्यार करने लगता है, लेकिन वो जानता है कि वो उसके लायक नहीं है। उसे लूसी में वो पवित्रता, वो अच्छाई दिखती है जो उसकी अपनी जिंदगी से गायब है।
और आखिरकार शादी लूसी और चार्ल्स डारने की होती है।
हाँ, लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। शादी की सुबह
क्या होता है?
डारने डॉक्टर मैनेट को अपना असली नाम बताता है, चार्ल्स सेंट एवरेमोंड।
एवरेमोंड?
ये
तो वही नाम है।
हाँ, वही क्रूर रईस परिवार जिसने डॉक्टर मैनेट को बिना किसी वजह, बिना मुकदमे के सालों तक बेस्टील में सड़ने के लिए छोड़ दिया था।
ओह गॉड, ये सुनते ही डॉक्टर मैनेट पर क्या गुजरी होगी?
जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो, वो सदमा इतना गहरा होता है कि वो 9 दिनों के लिए
फिर से अपनी पुरानी हालत में लौट जाते हैं।
हाँ, चुपचाप बस जूते बनाते रहते हैं। ये घटना फिर से दिखाती है कि अतीत वो कभी मरता नहीं, वो बस सही मौके का इंतजार करता है।
मिस्टर लॉरी और लूसी उन्हें फिर संभालते हैं, लेकिन ये साफ हो जाता है कि एवरीमून नाम का साया वो उनके जीवन से कभी हटेगा नहीं।
और जब ये सब व्यक्तिगत ड्रामा चल रहा है लंदन में, पेरिस में इतिहास एक बड़ी करवट ले रहा है।
1789, बेस्टील का पतन
और फ्रांसीसी क्रांति आग की तरफ फैल जाती है। डिकेंस यहाँ कमाल का संतुलन दिखाते हैं।
कैसे?
वो सदियों से जुल्म सह रही आम जनता के गुस्से को जायज ठहराते हैं, उनका दर्द दिखाते हैं, लेकिन
क्रांति के नाम पर जो हिंसा होती है,
हाँ, वो अंधाधुंध हिंसा, वो आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर, उसकी भयावहता को भी पूरी निर्ममता से सामने रखते हैं।
और इस क्रांति की आग हो और भड़काने वाली एक पात्र है, मैडम डिफार्ज।
ओहो, मैडम डिफार्ज बदला लेने की साक्षात देवी जैसे। वो लगातार बुनाई करती रहती है,
लेकिन वो कोई आम बुनाई नहीं है।
बिल्कुल नहीं, हर फंदा, हर टांका एक कोड है। वो अपनी बुनाई में क्रांति के दुश्मनों के नाम इनकोड कर रही है, एक तरह की हिट लिस्ट बना रही है वो।
बापरे, और उसकी नफरत की वजह?
वजह बहुत गहरी और दर्दनाक है। चार्ल्स डारने के पिता और चाचा मतलब एवरेमोंड भाइयों ने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। उसकी बहन का बलात्कार, भाई की मौत, पिता की मौत।
ओह, उसका दर्द तो वास्तविक है।
हाँ, दर्द असली है, लेकिन उसका बदला लेने का तरीका, वो अंधा हो चुका है। डिकेंस यहाँ एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या बदला लेने की ये प्यास उसे भी उतना ही क्रूर नहीं बना देती?
ये सोचने वाली बात है।
उसकी नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो सिर्फ एवरेमोंड परिवार के दोषियों को ही नहीं, बल्कि बेकसूर चार्ल्स डारने और यहाँ तक कि लूसी और उसकी मासूम बेटी को भी मिटा देना चाहती है।
सिर्फ इसलिए कि उनमें एवरेमोंड खून है?
हाँ, वो दिखाती है कि कैसे पीड़ित भी अत्याचारी बन सकता है जब नफरत आंखों पर पर्दा डाल दे।
इसी बीच बैस्टील से डॉक्टर मैनेट का लिखा एक पुराना पत्र भी मिलता है।
हाँ, जो उन्होंने अपनी कैद के दौरान छुपा दिया था। उसमें उन्होंने एवरेमोंड भाइयों के सारे जुल्मों का कच्चा चिट्ठा लिखा था और गुस्से में उन्होंने उनके पूरे खानदान को श्राप दिया था।
और उन्हें क्या पता था कि उनके अपने शब्द एक दिन उनके दामाद के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे।
बिल्कुल, और वही होता है। साल आता है 1792, क्रांति अपने चरम पर है।
डारने को फ्रांस से खबर मिलती है।
हाँ, कि उसके एक पुराने वफादार नौकर गिबेल को उसकी मदद करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है।
और डारने
अपने फर्ज को निभाने और शायद क्रांति के न्याय पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करके पेरिस लौट जाता है।
ये तो बहुत बड़ा जोखिम था।
बहुत बड़ा। पेरिस अब वो शहर नहीं रहा जिसे वो जानता था। एक भगोड़े रईस के रूप में उसे आते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है।
आतंक का राज चल रहा है।
हाँ, और एवरेमोंड नाम ही मौत की सजा के लिए काफी है। लूसी और डॉक्टर मैनेट फॉरन पेरिस पहुंचते हैं।
डॉक्टर मैनेट का तो वहां सम्मान होगा, बेस्टिल के पीड़ित होने के नाते।
हाँ, क्रांतिकारियों ने हीरो मानते हैं। उनके प्रभाव और उनकी गवाही से डारने पहले मुकदमे में बरी हो जाता है।
चलो, कुछ राहत मिली।
लेकिन ये राहत कुछ ही घंटों की थी। उसी दिन मैडम डिफार्ज और उनके पति नए इल्जाम लेकर आते हैं,
और साथ में
डॉक्टर मैनेट का वो पुराना पत्र।
ये तो भयानक विडंबना है। पिता के लिखे शब्द ही बेटी के पति की मौत का फरमान बन गए।
बिल्कुल, डारने को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और इस बार गिलोटिन से मौत की सजा।
अब तो कोई उम्मीद नहीं बची होगी।
सारी उम्मीदें जैसे खत्म। और तभी सीन में फिर से एंट्री होती है सिडनी कार्टन की।
वो पेरिस पहुंचता है।
हाँ, और वो डेफार्ज दंपत्ति की बातें सुन लेता है। जान जाता है कि वो लोग लूसी और उसकी बेटी को भी मारने की फिराक में है।
तब कार्टून क्या करता है?
यही वो कार्टून जो अपनी जिंदगी को हमेशा व्यर्थ समझता रहा, एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको चौंका देता है। उसे लूसी के लिए अपने एक तरफा प्यार में और शायद अपनी उस बर्बाद जिंदगी को कोई अर्थ देने की चाह में एक रास्ता दिखता है।
क्या करता है वो?
वो अपनी शक्ल डालने से मिलने का फायदा उठाता है।
अच्छा, वो जेल जाता है?
हाँ, जेल में डालने से मिलता है। उसे बेहोश करता है, उसके कपड़े पहन लेता है
और डारने को अपनी जगह छोड़ देता है।
हाँ, और डारने को भिजवा देता है। मिस्टर लॉरी की मदद से डारने, लूसी, उनकी बेटी और डॉक्टर मेनेट सब सुरक्षित पेरिस से निकल जाते हैं।
कमाल है। लेकिन मैडम डेफार्ज वो तो लूसी को ढूंढ रही होगी।
हाँ, वो लूसी को पकड़ने उनके घर पहुंचती है, लेकिन उसका सामना होता है लूसी की वफादार सेविका मिस प्रॉस।
मिस प्रॉस?
हाँ, और उन दोनों के बीच हाथापाई होती है, जैसे प्रेम का घृणा से सीधा टकराव। और इस संघर्ष में मैडम डेफार्ज अपनी ही पिस्तौल से मारी जाती है।
नफरत आखिरकार खुद को ही नष्ट कर लेती है।
बिल्कुल। और अंत में सिडनी कार्टन डारने के भेस में पूरी शांति और गरिमा के साथ गिलेटिन की तरफ बढ़ता है।
उफ।
रास्ते में उसे एक और कैदी मिलती है, एक युवा दर्जी। वो मौत से डर रही है। कार्टन उसे हिम्मत बंधाता है।
और उसके आखिरी शब्द?
उसके आखिरी शब्द अमर हो गए हैं। यह कहीं कहीं बेहतर काम है जो मैं कर रहा हूँ, उस काम से जो मैंने कभी किया है। यह कहीं कहीं बेहतर आराम है जहाँ मैं जा रहा हूँ, उस आराम से जो मैंने कभी जाना है।
इट इज अ फार फार बेटर थिंग।
वाह, क्या अंत है। ये उपन्यास वाकई पुनरुत्थान और बलिदान की कहानी है।
हाँ, डॉक्टर मैनेट का मानसिक पुनरुत्थान, डारने का मौत के मुंह से लौटना,
हाँ।
और सबसे बढ़कर सिडनी कार्टन का वो परम बलिदान।
क्या लगता है, कार्टन का ये बलिदान सिर्फ लूसी के प्रेम के लिए था, या ये उस समाज पर भी एक टिप्पणी थी जिसने, मतलब, उसे अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने का कोई और रास्ता ही नहीं दिखाया? ये सोचने वाली बात है। शायद दोनों ही। वो अपनी जिंदगी को व्यर्थ मानता था और इस बलिदान ने उसे वो अर्थ दिया, वो शांति दी जो जीते जी उसे कभी नहीं मिली। ये उसकी आत्मा का पुनरुत्थान था।
और डिकिंस दिखाते हैं कि कैसे चरम व्यक्तिगत त्याग में भी गहरा अर्थ मिल सकता है, खासकर जब चारों तरफ इतनी उथल पुथल हो।
बिल्कुल। और वो द्वंद, वो विरोधाभास जो शुरू में था, वो अंत तक बना रहता है। लंदन बनाम पेरिस, कार्टन बनाम डारने, लूसी बनाम मैडम डेफार्ज।
वो इंसान और समाज कितने जटिल हैं। अच्छाई, बुराई, प्यार, नफरत, सब साथ साथ चलते हैं।
हाँ, और क्रांति वो जरूरी हो सकती है, लेकिन उसका खतरा भी है। वो अपने ही बच्चों को खाने लगती है। डिकिंस लिखते हैं ना, मानवता को एक बार फिर वैसे ही हथौड़ों के नीचे कुचल दो और वो फिर से उन्हीं विकृत रूपों में मुड़ जाएगी। हिंसा का चक्र चलता रहता है।
लेकिन इस अंधेरे में भी डिकिंस उम्मीद के किरण दिखाते हैं, व्यक्तिगत प्रेम और निष्ठा में।
हाँ, लूसी का वो अटूट प्रेम, मिस्टर लॉरी और मिस प्रॉस की वफादारी, डारने का अपने फर्ज के प्रति समर्पण,
और कार्टन का प्रेम जो उसे बदल देता है।
हाँ, शायद डिकिंस यही कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऐतिहासिक तूफानों के बीच भी इंसानियत इन्हीं छोटे छोटे रिश्तों और बलिदानों में जिंदा रहती है।
ये कहानी हमें दिखाती है कि ऐतिहासिक ताकतें चाहे कितनी भी बड़ी हों, हमारे व्यक्तिगत चुनाव, हमारा त्याग और प्रेम, वो मायने रखता है। वो हमें अंधेरे में भी रोशनी दे सकता है।
और ये एक चेतावनी भी है कि न्याय और बदले की भावना के बीच की लकीर कितनी कितनी महीन हो सकती है। नफरत का जुनून जब हावी होता है तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देता है, चाहे शुरुआत कितनी ही जायज क्यों ना लगी हो।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।